पुण्य कर्म जप ध्यान यज्ञ दान तीर्थ स्थान अकारणे सब गेलो मोहे अकारणे सब गेल बुझिलाम मने हे ना उपहास हय जेना वस्त्रहीन अलंकार देहे वस्त्रहीन अलंकार देहे साधु मुखे कथामृत सुनिया विमल चित साधु मुखे कथामृत सुनिया विमल चित
साधु मुख से कथा सुनकर भी मेरा चित्त वहां विमल नहीं हुआ क्यों
नाही भेल अपराध कारण अपराध कारण
और क्या किया मैंने
सतत असत संग सकली हईल भंग
निरंतर में असत संग किया सकली हईल भंग मतलब समस्त नियमों को मैं तोड़ता रहा
की करीब आईले शमाना
की करीबे आता मैं काय करूं आईले शमाना अब मेरी मृत्यु सामने खड़ी है अब मैं क्या करूं
की करीब आईले शमाना श्रुति स्मृति सदा रबे सुनियाची ए सबे
श्रुति स्मृति सभी में अनादिकाल से इस बात को मैंने सुना है
हरिपद अभय शरण
सुना तो मैंने बहुत कुछ परंतु क्या हुआ
जन्म लिया सुखे कृष्ण ना बलिनु मुखे करिनु से रूप भावना
अर्थात श्रुति स्मृति में सदा मैंने सुना सभी शास्त्रों में इसी बात को कहा गया है हरि पद अभय शरण भगवान हरि के चरण कमल ही अभय प्रदान करते हैं परंतु इतना सुंदर जन्म प्राप्त करके भी कृष्ण ना बलिनु मुखे मैंने कभी कृष्ण के नाम का उच्चारण नहीं किया कैसा नाम उच्चारण ना करिनु से रूप भावना जिस नाम उच्चारण से हृदय में चित्त में भगवान के रूप का ध्यान हो सके
राधा कृष्ण दोपाय तनु मन रहुताय
मैं अपने तन और मन दोनों को राधा कृष्ण के चरणों में अब समर्पित करता हूँ दुहु पाय मतलब दोगांचे पायत अपने तन को और मन को रखता हूँ आर दूर जाऊ क वासना और जितनी वासना है वे दूर जाने दीजिए
राधा कृष्ण दुहु पाय तनु मन रहुताय अर दूर जाऊ क वासना वासना नरोत्तम दासे कोया अर मुरे नाही भय नरोत्तम नाही भय तनु मन संपीनु आपना तनु मन संपीनु आपना तनु मन संपीन आपना आपना हरि हरि की मोर करम अभाग हरि हरि की मोर करम अभाग विफले जीवन गेला हृदय रहिलो शेला नाही भेलो हरि अनुराग अनुराग नाही भेलो हरि अनुराग नाही भेलो हरि अनुराग जय रुक्मिणी द्वारकाधी जय रुक्मिणी द्वारकाधी रुक्मिणी द्वारकाधीश जय रुक्मिणी द्वारकाधी जय गौरनिताय 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 जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद।
गौर प्रेमानंदे। इस भजन का अर्थ एक बार पढ़ ले मराठी में। हे हरी, माझ्याच वाईट कर्मामुळे मी स्वतःला दुर्भागी बनवले आहे। भगवान श्री हरींच्या आसक्ती विना मी माझे जीवन व्यर्थ घालविले आहे। या तीव्र यातना माझ्या हृदयात आहेत आणि त्या वाढतच आहेत। यज्ञ दान तीर्थस्थानी वास धार्मिक कार्ये मंत्र जप आणि ध्यान धारणा या सर्व गोष्टी खोट्या भौतिक आसक्तीमुळे व्यर्थ आहेत। मी हे जाणू शकतो की तथाकथित धार्मिक कार्ये म्हणजे वस्त्रहीन देहावर अलंकार परिधान केल्याप्रमाणे आहेत। हा केवळ एक उपहास आहे। हृदयांचे शुद्धीकरण करणाऱ्या कृष्ण कथांचे श्रवण करून देखील माझे मन पुन्हा दूषित होते। हे केवळ माझ्या अपराधामुळेच होते। मी सतत अभक्तांचा संग करतो आणि सर्व नियमांचा भंग देखील करतो। जेव्हा मृत्यू माझ्या समोर येईल त्या क्षणी मी काय करू? मी असे ऐकले आहे की श्री हरींचे चरण हे एकच सुरक्षित आश्रयस्थान आहे। श्रुती आणि स्मृतीमध्ये याचे अनादि काळापासून गुणगान केले आहे। जन्मापासून मी कधीच श्रीकृष्णांच्या नावाचा धावा केला नाही की त्यांच्या सुंदर रूपावर ध्यान केले नाही। म्हणूनच शरीर आणि मनाला राधा कृष्णांच्या चरणावरच राहू द्या। माझ्या भौतिक इच्छांचा देखील नाश होऊ दे। नरोत्तम दास म्हणतात, आत्ता मला कोणतेच भय नाही। हे भगवंता, आता माझे शरीर आणि मन मी तुम्हाला अर्पण केले आहे। श्री नरोत्तम दास ठाकूर की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तित। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 24 अध्याय कर्दमुनि का वैराग्य। पुनः कल जिन दो श्लोकों को लिए थे उन्हीं की पुनरावृत्ति करेंगे। कृपा मेरे विचित है। मैत्रेय उवाच, एक ही श्लोक लेंगे हम। ठीक है। निर्वेदवादिनी मेवम मनोर दुहितरं मुनि दयालु शालिनी महा शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीम् एवं मनोर्दुहितरं मुनि दयालुशालिनी महा शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् कृपया द्वारा तो थोड़ा शुक्ला है वो शुक्ला निर्वेदवादिनी मेवम मनोर्दुहितरं मुनि दयालुशालिनी महा शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् मैत्रेय परम साधु मैत्रेय ने उवाच कहा निर्वेदवादिनीम वैराग्य से युक्त बातें करने वाली एवं इस प्रकार मनो स्वयंभू मनु की दुहितरम पुत्री को मुनि कर्द मुनि ने दयालु शालिनिम प्रशंसा की पात्र आह कहा शुक्ल भगवान विष्णु द्वारा अभिव्याहृतम कथित स्मरण करते हुए अनुवाद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणानंद भक्तियां स्वामी श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्य पूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। अगला श्लोक और अनुवाद भी पढ़ लेंगे। ऋषि उवाच आप ठीक सुन लेंगे। माखिदो राजपुत्रित्थम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भम् अधूरा संप्रपस्यते। श्लोकानुवाद। मुनि ने कहा आपसे सुनिए हे राजकुमारी तुम अपने आप से निराश न हो तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य कर्दमुनि ने अपनी पत्नी को यह सोचकर कि वह कितनी अभागी है दुखी न रहने के लिए प्रेरणा दी क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके शरीर से अवतार रूप में प्रकट होने जा रहे थे। होमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। असाधु साधुनादाय नाति नीचो ततारक हानमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरः। निर्वेदवादिनीम् एवं मनोर्दुहितरं मुनि दयालुशालिनीम् आह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरण। और दूसरा भी श्लोक फिर कर्द मुनि कहे, मा खिदो राजपुत्रित्थम् आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवांस्ते अक्षरे गर्भम अधूरा संप्रपस्यते। तो यहां पर कर्दम मुनि का वैराग्य इस अध्याय का प्रारंभ हुआ है। और कथा की शैली होती कि आप जब किसी विषय को प्रस्तुत करते तो उसका पूर्व जो विषय है उसके साथ उसका संबंध को बतलाना पड़ता है। तो इसलिए यहां पर भी मैत्रेय पूर्व अध्याय के साथ इसका संबंध बता रहे हैं कि निर्वेदवादिनिम एवं शालिनिम मनोर्दुहितरम, इन शब्दों पर कल हम विचार कर रहे थे। माता देवहूति जिन्हें अपने माँ के रूप में भगवान चुने, उनके गुणों को मैत्रेय मुनि यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। जो स्वयंभू मुनि की पुत्री थी, स्वयंभू मनु की पुत्री, मतलब इस संसार के जो चक्रवर्ती सम्राट है उनकी पुत्री, जिन्हें कर्द मुनि राजकुमारी के रूप में संबोधित किए। हालांकि विवाह हो चुका था और कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु फिर भी वे उन्हें राजकुमारी कह रहे हैं। तो जिसका पूर्व जीवन ऐश्वर्य संपन्न रहा और अंततः जब पति भी उनकी सेवा से संतुष्ट है, तो पति ने भी असीम ऐश्वर्य प्रदान किया। ऐसा ऐश्वर्य जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो परंतु ऐसे ऐश्वर्य में रहने वाली, इसलिए मनोर्दुहित रम्य शब्द है। और ऐसी देवहूति शालिनीम, अगले श्लोक में शब्द है अनिंदिते। अनिंदिते मतलब संपूर्ण जीवन में कोई निंदित कार्य जिसने न किया हो उसको अनिंदिते कहते हैं। मतलब कभी कोई अनैतिक या शास्त्र विरुद्ध किसी क्रिया को ना शरीर से ना मन से ना वाणी से की हो, वे माता देवहूति जिनका अनिंदित जीवन था। बहुत ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगे मुझे, अनिंदित। तो ऐसी अनिंदित शालिनी अत्यंत प्रशंसनीय। प्रशंसा कौन सी, इस संसार में कौन से गुण का प्रशंसा है? तो प्रमुख रूप से जब माता देवहूति को इतना ऐश्वर्य प्राप्त होने के उपरांत अंततः उन्हें जो अनुभूति हुई, जो पिछले अध्याय के 7 श्लोकों में वर्णित की गई है, तो स सर्वतत् भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाय अभयम् दातुमर्हसि। कि वह अपने पति के सामर्थ्य को जानती थी, पति के तेज को वह जानती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि कृपया मुझे अभय प्रदान करे। और फिर उन श्लोकों में उन्होंने अपना पश्चाताप, जिसे अनुताप कहते हैं, उसको व्यक्त किया, जिनका वो बहुत सुनेंगे जी। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मना। लगभग वहां से आप कह सकते हैं। एत अवतालम कालेन व्यतिक्रांतेन हे प्रभु। तो सर्वप्रथम उनके जीवन में शोक क्या रहा, जैसे अभी हमें भजन, इसीलिए मुझे स्मरण हुआ, श्री रतन दास ठाकुर ऐसे कई भजन लिखे जिसमें यह मानव जीवन जो अति दुर्लभ है, इस मानव जीवन का प्रतिक्षण जो अत्यंत मूल्यवान है, इस मानव जीवन में भगवत भजन के व्यतिरिक्त जितना समय बिताया जाता है, जैसे नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद मुनि जो भक्ति की व्याख्या की है, वहां पर भक्ति अर्थात क्या, तो वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया, परम व्याकुलतेति। भक्ति का अर्थ क्या, भक्ति मतलब जिस प्रकार से मछली को जब जल से बाहर निकाल दिया, जैसी अवस्था होती है वैसी अवस्था जब जीव की हो उसे भक्ति कहते हैं। जब जीव भगवान की सेवा के लिए, भगवत सानिध्य के लिए व्याकुल हो उठता है, उस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव हम, हमारी वो भक्ति प्रारंभ भी नहीं हुई है। अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं, वास्तव एक दृष्टि से देखा जाए कलयुग के जीव जो अपात्र है, किसी दृष्टि से भी कोई उनमें योग्यता नहीं है, परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से हमें कुछ भक्ति के अंगों का अभ्यास प्रारंभ किए, जो एक एक उचित धरातल तैयार करता है भक्ति के लिए। हाँ, ये हम 16 माह कर रहे हैं, नियमों का पालन करते हैं, क्रमशः इसे करते करते जब हृदय पवित्र होता है तब वास्तविक भक्ति प्रारंभ होती है। वास्तविक भक्ति जिसे नाथ ने कहा परम व्याकुलतेति, जो जीव का मूल स्वभाव है, और उस जीव का स्वभाव जो है भगवत सेवा, भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम के साथ, भगवान के प्रति अत्यंत जीव जब व्याकुल हो जाए, उस भाव में जो भगवान की सेवा की जाए, तो उसी अवस्था को वास्तविक जीवन कहा गया है। उसके व्यतिरिक्त जितना समय मानव जीवन हम बिताए वास्तविक उससे कहा जाए तो मरण ही है। जैसे परसों में देख रहा था, ऊपर आश्रम में था, कैसे है तरबूज कहते हैं ना, जो लाल होता है अंदर से, जो सफेद होता है खरबूज है ना, तो तरबूज रखा था। आजकल विश्व से कृत्रिम रूप से जब वो तरबूज जो प्राप्त होते हैं, जिसको अधिक फुलाया जाता है, और आप जब उसका वजन लेंगे तो बहुत वजन भी होता है ना, 1 किलो का, 2 किलो का, 4-5 10-10 किलो के भी तरबूज रहते हैं, परंतु 10 किलो का तरबूज है उसको आप जब चीरते हैं, उसको जब काट देते हैं, देखेंगे वो जो ऊपर का जो आवरण है वो बहुत मोटा रहता है, और असली जो तत्व है या असली सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, जो लाल लाल सार, वो सार बहुत कम होता है, ऊपर का जो आवरण है वो बहुत मोटा रहता है। तो था तरबूज 10 किलो का, और शायद उसमें से आधा 1 किलो ही निकलेंगे है ना, असली जो सार है। तो हमारा मानव जीवन भी वो तरबूज के जैसा है, और जितना समय अन्य कार्यों में बिताया भगवान के लिए जो व्याकुलता होनी चाहिए, वह क्षण अगर हमारे जीवन में कभी आए है एकदम हृदय से आर्त भाव से, जिस तरह से यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर के की कृष्णाच्या नावाचा धावा नाही केला मी, धावा मतलब जब पुकारना भगवान को, वह जितना समय किया है, मैं कल प्रातः बहुत सुंदर एक चैतन्य चरितामृत इस शब्द की व्याख्या सुन रहा था। जो जीवन को चेतन, ऐसा चरित्र जो जीवन को चैतन्य लाए और अमृत मतलब शाश्वत जीवन प्रदान करे। तो चैतन्य चरितामृत क्या, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लक्षित, चैतन्य महाप्रभु लीला क्या है, चैतन्य महाप्रभु एक जीव किस तरह से भगवान के लिए व्याकुल हो जाता है, किस तरह से भगवान के लिए तड़पता है, इस भावना को श्री चैतन्य महाप्रभु प्रारंभ से अंत तक प्रकट किए। और वही चैतन्य चरितामृत है और वही वास्तविक चैतन्य लाता है जीव में। उसके अलावा अन्य जितना समय मरण है, तो हम देखा जाए तो हमारे जीवन में भी अधिकांश काल भगवत विस्मरण में और इस संसार के अनावश्यक कार्य में बिता देते हैं, जो तरबूज के आवरण के समान है। और अत्यंत व्याकुल होकर जो भगवत भजन किया जाए वह है वो अंदर का सार। तो यहां भी माता देवहूति शोकर एतावतालम श्लोक से जो हम सुन रहे थे, हाँ, एतावतालम काले न व्यतिक्रांते न मे प्रभो, कि हमने बहुत अधिक अतिक्रमण कर लिया काल का, बहुत समय बिता दिया, कि इसमें इंद्रियार्थ प्रसंगे न परित्यक्त परात्मना, भगवत भजन को परमात्मा परमार्थ को प्राप्त करने का कार्य न करके इंद्रियार्थ प्रसंगे न, अपने इंद्रिय भोग में बहुत अधिक समय चले जाता। कल भी हम सुन ही रहे थे, कुछ भक्तों कल प्रश्न पूछे थे सर, तो कल भी हम इस बात को सुने, आहार निद्रा आदि। हालांकि भगवत भावना से युक्त तो होकर हम करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें एक हानि ये जरूर है कि समय जाता है बहुत, और जो फोकस होना चाहिए कृष्ण भावना का वो तुरंत भ्रमित हो जाते उससे जीव इन शारीरिक कार्यों में। तो उसी को वो माता देवती कहती है, इंद्रियार्थेषु संजन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परम भावं तथापि अस्तु अभयाय मे। तो पहले दो बातें माता देवहूति कही, जिन भाव को देखकर मैत्रेय मुनि के मुख से यह उद्गार निकल पड़े कि शालिनीम आह, क्यों प्रशंसनीय है कि इतना भोग प्राप्त होने के बाद इस तरह का शोक विलाप बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। जिन लोगों के जीवन में भोग प्राप्त हुआ है अनुभव है कि छूटता नहीं है, परंतु यहां पर आगे चल के भी जब भगवान कपिल देव जब आते तो वहां पे सबसे पहला वचन भी माता देवती जो कही है, निर्विण्णा निद्रां भूमन असत इंद्रिय तर्शनात् ये न संभाव्यमान न प्रपन्न न अंधम तमा प्रभो। सबसे पहले जब भगवान कपिल देव के समक्ष बैठी तो निर्विण्णा नित्राम भूमन असत इंद्रिय तर्शनात्, ये असत इंद्रिय इन जो यह भ्रमात्मक है जो इंद्रिया है इसकी तर्शनात् मतलब जो प्यास है इससे थक चुकी हूं मैं, इस इंद्रियों को तुष्ट करते 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 बहुत जीवन बीत गया मेरा और मैं इस अंधकार में जीवन में गिरी हूं, कृपया मेरा उद्धार करें, भगवान कपिल देव से भी कहिए। तो माता देवती के जीवन में यह जो अनुताप आया इसके विषय में मैं जो विचार कर रहा था, जिसको श्री हरिदास ठाकुर भी हरिनाम चिंतामणि में कहे हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन में यदि प्रगति करना चाहे तो उसके लिए आवश्यक कुछ विशेष गुण हैं, उन गुणों को जीवन में अनुशीलन करने पर ही वह प्रगति कर पाता है। तो यहां प्रथम माता देवती पहले तो अनुताप की और तत्पश्चात वे कहते कि हे परम भावम अजानंत अजानंत्या परम भावम तथापि अस्तु अभयायते, कि मैं आपके साथ रही आपके सानिध्य में रही परंतु आपके परम भाव को आपकी उस आध्यात्मिक स्थिति को मैं समझ नहीं पाई और इसलिए आपके समीप रहकर भी वह लाभ मैं नहीं ले पाई जो लेना चाहिए था। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण दूसरा और एक भाव है कि आवश्यक नहीं यदि हम केवल शारीरिक रूप से साधु की संगति में रहे तो हम लाभान्वित होंगे। हालांकि वैदिक शास्त्र साधु संगति की महिमा से भरे पड़े हैं, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष प्रसंग, यहां पर भी वो शब्द है और आगे चलकर भगवान कपिल देव कहते प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवे विदु सैव साधु श्रीकृत मोक्ष द्वारम अपावृतम। मोक्ष का द्वार कहा गया है साधु की संगति को, परंतु साधु संग में रहकर भी माता ज्योति करे कि मैं लाभान्वित नहीं हो पाई। तो कई बार ऐसा देखा भी गया है कि जिस तरह से यहां पर माता देवहूति कर्दम मुनि की सेवा कर रही थी, बहुत श्रद्धा पूर्वक सेवा की, परंतु वे अंततः कह रही कि मुझे वह लाभ प्राप्त नहीं हो जो होना चाहिए था। और देखा गया है संसार में वैष्णव के इतिहास में कि कई बार बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा भी होते, बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, बहुत बड़े कोई गुरु होते हैं और उनके निजी सेवक भी होते हैं जो उनकी निजी सेवा करते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में पर्सनल सर्वेंट असिस्टेंट होते हैं। और देखा गया है कि जो बहुत समीप रहे हैं वह उतना लाभ नहीं पाते ले पाते जितने दूर वाले ले पाते हैं। और यहां तक देखा गया कभी कभी कि वे च्युत हो जाते हैं आध्यात्मिक पद से, या वे कभी कभी गिर जाते हैं। तो वहां पर कहते हैं कि साधु संगति में केवल रहने मात्र से लाभ नहीं होता है जब तक उस साधु संगति में उस साधु के द्वारा शिक्षा को प्राप्त न किया जाए। मतलब वपु के साथ जब वाणी को स्वीकार न किया जाए तो वपु पूर्ण कृपा को प्रदान नहीं करेगी। वपु से कृपा जरूर मिलती है, जैसे साधु की आप सेवा कर रहे हैं शारीरिक रूप से, उनके पाद संवाहन करते, उनका पाद प्रक्षालन करें, उनके भोग आदि बनाए, विभिन्न आप सेवाएं करते हैं तो सेवा से कृपा बहुत मिलती है, बहुत असीम कृपा प्राप्त होती है। परंतु वह जो शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा के साथ हम जो साधना में लगते हैं, वह साधना हमें पात्र बनाती है उस कृपा को ग्रहण करने के लिए। बहुत सुंदर, वपु सेवा कृपा असीम कृपा प्रदान करती है, परंतु वाणी सेवा उस कृपा के लिए हमको पात्र बनाती है। अन्यथा कृपा बहुत मिल जाती है साधु की सेवा करने से, गुरु की सेवा करने से, परंतु पूरा लीक हो जाता है। क्योंकि रहे तो आप शुद्ध भक्त के संगति में रहे, परंतु शुद्ध भक्त की संगति में रहकर भी उतने आप योग्य पात्र नहीं थे, तो जितनी कृपा मिली पूरी चली गई, बह जाती है। तो इसलिए मैं बहुत सुंदर शब्द सुन रहा था, संत सोई जो विषय छुड़ावे आप जपे और नाम जपावे, सोई साधो सोई साचो साधु कहावे। साधु शब्द की जब व्याख्या की तो संत किसे कहा गया जो विषय वासना छुड़ाकर आप जपे और नाम जपावे, जो वास्तविक आपको सीधा प्रत्यक्ष रूप से भगवत भक्ति के अंगों में संलग्न करे, चलो अपनी निजी सेवा में ही न लगा के रखे, अपनी निजी सेवा। जैसे हम विषय से मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव हम देखे कि हम जो परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी के भी जब सान्निध्य में रहे, ये कृपा और सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम देखिए महाराज जी के साथ जब रहते हैं, महाराज जी बहुत ध्यान रखते हैं, जो उनके साथ रहता है वो बराबर समय पर उठता है कि नहीं, उसकी साधना ठीक होती नहीं। वह एक कारण था कि प्रारंभिक अवस्था में लगभग 13 वर्ष पूर्व महाराज जी मुझे साथ में रखे थे, तो एक वक्त ने कहा भी कि महाराज इसको कुकिंग वगैरह तो उतना आता नहीं है। महाराज कहे कि साधना अच्छी करता है। तब कहे थे लोग ये अमरावती में जो कथा हुई 2001 में, हाँ उस समय लोग 1.5 महीना महाराज जी के साथ में हम थे, दिल्ली के पास एक फार्म हाउस है गुड़गांव में, वहां पर हम 1 महीना रहे थे। तो उसके बाद क्योंकि तब 1 महीना महाराज ने मुझे देखा था, मुझे वो उस समय सेवा मिली थी कि प्रतिदिन प्रातःकाल उठना है, जल्दी उठना है, तो मुझे आदत में उठ जाता था, साधना करता और जाकर महाराज जी को उठाना रहता और महाराज जी के लिए फिर पानी तैयार करो, फिर स्नान की व्यवस्था सब कर दो, तो वह करता फिर आ जाता था। और उस समय महाराज जी के अनेक सेवक थे, साक्षी गोपाल प्रभु, उनके साथ में रहता था और उनको फिर अन्य सेवाओं में मैं सहयोग करता था। तो उस समय महाराज देखे थे तो, और अन्य वो जितने भी महाराज जी की सेवा में जो आए तो उनका भी व्यक्तिगत अनुभव मैं देखा प्रत्यक्ष रूप से, कि महाराज का एक विशेष स्वभाव था कि बहुत ध्यान रखते थे कि साधना कैसी हो रही है, वो जब करता है, कब सोता है, किस समय प्रसाद ले रहा है, ध्यान रखते थे। और वो तुरंत फिर टोक भी देते यदि ठीक से जब हुआ कि नहीं। इवन जब हम गाड़ी में कहीं जाते यात्रा में, तो महाराज देखते थे कि पीछे सो रहा है कि जब कर रहा है, यहाँ तक ध्यान रखते थे। तो यहाँ पे माता देवती करदम मुनि के साथ जब थी, तो हम देखते हैं कि हालांकि थी वह करदम मुनि के साथ, परंतु लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वह उस साधु की संगति में रहकर भी वह सेवा में नहीं लग पाई, मतलब साधना में नहीं लग पाई। तो अंततः यहाँ पर आती है करदम मुनि के समक्ष, साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म। ये भगवान की बहुत बड़ी माया है, इस संसार में आप रहते, संसार में इंद्रिय भोग में लग जाते हैं, संसार में रहकर साधु की संगति नहीं मिलती, यह तो माया ही। परंतु सबसे बड़ी माया क्या है, हम साधु की संगति में आकर साधु संग का यदि लाभ न ले पाए। सो हम भगवता नूनम, ऐसे ना, साहम समझिए, हाँ साहम भगवतानुनम वंचिता माया दृढ़म। ये दृढ़ माया कैसे भगवान की माया है कि इतने बड़े संत महात्मा है, करदम मुनि साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र, जिन्हें भगवान दर्शन दिए, जो निरंतर समाधि में लीन रहते थे, उन समाधिस्थ महात्मा करदम मुनि के साथ रहकर भी वंचित रह गई। मैं वो कहते हैं माया दृढ़म यत्वामि मुक्तिदम प्राप्य न मोक्षे बंधनात्, कि जो मुक्ति प्रदान कर सकते जो भवबंध उनके साथ रहकर भी मैं नहीं कर पाई, तो अंततः तो याचना करती है। तो दूसरा बहुत प्रमुख भाव यहां पर जो बतलाया गया है, वास्तविक हमारे जीवन में यह हमारी आवश्यकता है साधु संग। एक होता है साधु संग के लिए लालायित होना, और दूसरा होता है साधु संग आपके ऊपर जबरदस्ती थोप देना। जैसे आयुर्वेद में भी कहा जाता है, आयुर्वेद में एक नियम होता है कि हम सुने हैं बचपन में, हम सुने जब भूख लगती है तभी भोजन लेना चाहिए, कहते हैं एक नियम आयुर्वेद में होता है, ऐसे हम सुने भूख लगने पर यदि भोजन करते तो शरीर को लगता है, मतलब आपकी एकदम तीव्र जब जठराग्नि हो, एकदम प्रबल जब रहती है जठराग्नि, और उस समय जैसे आप अन्न ग्रहण करेंगे तो तुरंत तो शरीर को लगता है, और भूख न हो और आप भोजन अगर लेते हैं, पहले से तो भोजन आपको भाता नहीं है, परंतु ये जबरदस्ती लिया जाए तो शरीर को लगता नहीं है। तो साधु संगति का लाभ कब होता है, जब हमारे जीवन में साधु संगति की भूख हो, जब साधु संग की जब भूख लगेंगी तो साधु संग हमको लाभ प्रदान करेगा, अन्यथा साधु संग में रहकर भी हम साधु के समक्ष जाकर जब तक स्वयं याचना न करें, साधु के बीच में तो रहते हैं ना, भक्तों की संगति में रह रहे हैं, परंतु हमारे जीवन में निश्चित रूप से निसंदेह एक ऐसा साधु होना चाहिए जिसके समक्ष हम जाकर अपने हृदय को प्रकट कर सके, जिस तरह से यहां पर माता देवती कह रही है। और यह अति आवश्यक है, जैसे यहां पर बतलाया गया है कि जब आप भगवत भजन को प्रारंभ करते हैं और भगवत भजन में साधु की संगति में जब श्रवण आदि करते हैं, श्रवणम कीर्तनम आदि, ये नवधा भक्ति की एक अलग ही व्याख्या बहुत अच्छी सुनी मैंने, श्रवणम, सुनने को श्रवण नहीं कहते, केवल कान से सुन लिया उसको श्रवण नहीं कहते। आप बैठ गए भागवतम क्लास में, हमने श्रवण भक्ति की क्या, प्रश्न है भागवतम क्लास में बैठने से श्रवण भक्ति पूर्ण हुई क्या, तो कहते श्रवण मतलब सुनने को श्रवण नहीं कहा जाता है, रिसेप्टिविटी को श्रवण कहा गया। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ मतलब आपका अगर मोबाइल नेटवर्क कवरेज के बाहर है तो कॉल रिसीव नहीं कर सकते, तो तो आपका भी अब चेतना कवरेज के बाहर हो जाती है, आप भले बैठ जाए, आपका कान खुला रहे, परंतु आप श्रवण अगर ग्रहण करने का भाव न हो तो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो यहां पर श्रवण मतलब रिसेप्टिविटी, इस श्रवण को कहते हैं। कीर्तन मतलब कहते हैं कीर्ति और तन से ऊपर उठना, इसको कहते हैं कीर्तन। इन दो चीज से जब आप ऊपर उठ जाते हैं, एक तो कीर्ति होता है संसार में, कीर्ति मतलब मान प्रतिष्ठा, और दूसरा तन, देह का जो भान है, ये देह का भान जब न रहे और कीर्ति का भान जब न रहे, तो वास्तविक जब भगवान की महिमा को गान किया तो उसको कीर्तन कहा गया। तो अलग ये नवधा भक्ति का जब अनुशीलन करते हैं, अच्छी तरह से श्रवण करते करते हृदय पवित्र होता है, और हृदय जब पवित्र होता है उसका प्रथम एक लक्षण होता है, हृदय जब पवित्र होगा उसका प्रथम एक लक्षण होगा कि हृदय में एक प्रामाणिकता आती है, जिसे यहां पर कहा गया। परीक्षित महाराज के प्रसंग में भी हम श्रवण कर रहे थे, परीक्षित महाराज जब शमिक ऋषि के गले में सर्प डाले थे तो वे स्वयं स्वीकार किए, जिसको स्वीकृति, प्रामाणिक रूप से अपने दोषों को स्वीकार करना। तो यहां पर कहते कि सर्वप्रथम इधर कहा गया है कि यह अति आवश्यक है, यह भक्ति की प्रारंभ यहां पर है। भक्ति का प्रारंभ कहां है? जब जीवन में अपने दोषों के लिए हम अनुताप करें। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता में, आप सुनोगे, चेतसि दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। तो इसकी मैं टीका पढ़ रहा था, आचार्य दशायते जीव गोस्वामी, तो वहां पर भी कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, तो इस बात की व्याख्या की है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं चेतस अपिचेत सुदुराचारो, हाँ अपिचेत सुदुराचारो मतलब कोई दुराचार मतलब गलत आचरण वाला, और सुदुराचार मतलब बहुत, जिसको कहते हैं जो एकदम व्यसनी है गलत काम करने का, जो बहुत निरंतर पुनः पुनः पाप कृत्य करते रहता है, स्वभाववश प्रारब्धवश जो पुनः पुनः गलत कार्य करता है, चेतसि दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, परंतु अनन्यता उसकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, श्री कृष्ण छोड़ के और किसी का आश्रय नहीं लेता है, मतलब भगवत भक्ति कर रहा है परंतु फिर भी बीच बीच में गलतियां करती रहता है, बार बार वो गलत कार्य में प्रवृत्त होता है, तो उसको भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, साधु एव समन्तव्य, मंतव्य मतलब मेरी मान्यता है, भगवान अपना व्यक्तिगत मत बता रहे गीता में, साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः, क्योंकि वह पूर्णतः से मुझ में स्थित है इसलिए उसे साधु माना गया। तो यहां पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर की स्टाइल होती है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर प्रश्न उत्तर के रूप में टीकाओं को लिखे हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का कि उसको साधु कहना चाहिए, तो तुरंत प्रश्न पूछा जाता है, परंतु यदि कोई दुर्व्यवहार के कारण प्रदूषित है उसको आप साधु कैसे कह सकते हैं, वो पाप कर रहा है आप उसको साधु कह रहे हैं, मतलब व्यक्ति ने प्रश्न पूछा भगवान से कि आप उसको साधु क्यों कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, वहां पर शब्द भगवान क्या प्रयोग है, एव मतलब साधु ही है वहां, तो फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हाँ कुछ पार्शली, पार्शली मतलब क्या कहते हैं, आधा कुछ परसेंट शायद साधु होगा परंतु अधिकतर तो वो असाधु ही है, उसमें असाधुता है, उसके अंदर पाप कृत्य कर रहा है, तो जिस समय आपका पूजा की, जिस समय आपका नाम जप किया थोड़ी साधुता दिख गई परंतु अन्य समय तो पाप क्रिया कर ही रहा है, तो जितने प्रमाण में वह अन्यों की संपत्ति का हरण कर रहा है, अन्यों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, कम से कम उतना परसेंटेज तो साधु नहीं है ना, जब सुबह जप किया तो साधु है, बाकी समय जो पाप कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो साधु नहीं है। तो वहां पे भगवान बोलते हैं नहीं एव, वो पूरी तरह से साधु है, उसको किसी भी प्रकार से हम अभक्त नहीं देख सकते। क्यों? सम्यक व्यवस्थित हो, क्योंकि उसका दृढ़ता भगवान के प्रति, कुछ भी हो जाए परंतु भगवान का आश्रय नहीं छोड़ रहा है। कि मैं भले ही अपने पाप में कृत्य कारण नरक में जाना पड़े या मुझे पशु योनि भी क्यों प्राप्त न हो, परंतु मैं श्री कृष्ण की आराधना का त्याग नहीं करूंगा। यह उसका जो यह दृढ़ संकल्प है, यह अति प्रशंसनीय है, भगवान ही कह रहे। तो पुनः भी प्रश्न पूछते व्यक्ति पूछ रहा है, ऐसे अधार्मिक व्यक्ति की आराधना को आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं जो पाप कृत्य में लगा है? ऐसा अधार्मिक है, ऐसा पापी है, उसके हाथ के अन्न को आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं जिसका हृदय प्रदूषित है काम क्रोध वासनाओं से? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। अगला श्लोक क्या है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही। वहां पर पहला शब्द क्या है? क्षिप्रम। क्षिप्रम मतलब यहां तो मुझे स्मरण, क्षिप्रम तुरंत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। पहले श्लोक में लिखा गया कि सुदुराचार है, मतलब बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा दुराचारी है, मैं उसको साधु क्यों मानता हूं? क्षिप्रम, तुरंत वो साधु बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा वो कहते हैं, वो क्योंकि अधार्मिक नहीं है, वो तुरंत धार्मिक बन जाता है। किस तरह से? तो बतलाया जाता है कि वो जो भगवत भजन करता है, भगवत भजन करते जैसे कुछ उससे गलती होती है, एक सबसे प्रमुख उसका गुण है जो उसको धर्मात्मा बनाता है। और कौन सा गुण है? वो हृदय से बहुत अधिक पश्चाताप करता है। जैसे उससे गलती होती है वो भगवान के समक्ष जाकर अपने दोष को स्वीकार करता है, यही उसकी साधुता को सिद्ध करता है। मतलब यह यदि गुण न हो, यह अनुताप न हो, हृदय में पश्चाताप न हो, हृदय में अगर दोष की स्वीकृति न हो तो साधु बन ही नहीं सकता, इसका यह अर्थ हुआ। तो इसे माता देवती यहां पर पश्चाताप करे, तो मैं कई प्रमाण देख रहा था। श्रील प्रभुपाद के अलग श्लोक है, प्रथम स्कंद का, जैसे हम परीक्षित महाराज का भी कह रहे थे, उस तात्पर्य में से मैं कुछ वाक्यों केवल पढ़ूंगा श्रील प्रभुपाद के। राजा परीक्षित चूंकि एक भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, तो उन्होंने अपने कार्य को उचित नहीं समझा। और बार बार सोचने लगे कि क्या वास्तविक वो राजा शमिक ऋषि समाधि में थे या वो केवल ऐसा दाम्भिकता कर रहे थे। परंतु जो भी हो, मेरे कारण बहुत मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो वाक्य मैं अंग्रेजी में यहां पर लिखा है। तुरंत परीक्षित महाराज पश्चाताप करने लगे। वहां पर श्रील प्रभुपाद लिखते, रिपेंटेंस कम्स इन द माइंड ऑफ अ गुड सोल एज सून एज ही कमिट समथिंग रॉन्ग। ये एक सही वक्त का लक्षण है। सही वक्त उसे नहीं कहते जो गलती नहीं करता है, सही साधु उसे कहते हैं कि तुरंत गलती को स्वीकार जो कर ले और तुरंत उसके हृदय में पश्चाताप होता है। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर तथा श्री जीव गोस्वामी राजा परीक्षित के कार्यों को प्रारब्ध का फल नहीं कहते हैं। यह वास्तविक भगवान की योजना थी। परीक्षित जैसे अर्जुन का मोह में गिरना गीता के पूर्व, यह भगवान की योजना थी। युधिष्ठिर महाराज का युद्ध के उपरांत मोह में गिरना, यह भगवान की योजना थी। वैसे परीक्षित महाराज के द्वारा श्रमिक ऋषि के गले में सर्प डालना, यह भी भगवत योजना है। यह भगवान की योजना के तहत एक समय गीता का उपदेश भगवान को कहलवाना था, अर्जुन को मोह में डाला। जब भीष्म के मुख से उपदेश कहलवाना था तो युधिष्ठिर महाराज को मोह में डाल दिया, और अंत जब श्रीमद् भागवत को कहलवाना था तो परीक्षित महाराज को मोह में डाला। परंतु सभी तो परीक्षित महाराज यहां पर अनुताप करने लगे। अनुताप से होता क्या है? तो प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के प्रथम श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अत्यंत पुण्यशाली राजा गलती से हुए एक ब्राह्मण के प्रति अपराध के लिए बहुत पश्चाताप करने लगे। वास्तविक जिसका हृदय पवित्र होता है, उसका पवित्र हृदय का एक लक्षण है कि उसके हृदय में अनुताप होता है। एक मतलब पवित्र व्यक्ति के लिए अनुताप स्वाभाविक है। और क्या होता है? जब जीव, जब साधक भगवत भक्ति में कुछ गलती करे और वो अनुताप करने लगे, यह अनुताप गलती से हुए प्रारब्ध वशात जो पाप हुए हैं उससे जीव का उद्धार करता है. सच रिपेंटेंस डिलीवर्स अ डिवोटी फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस एक्सीडेंटली कमिटेड. जो हम नहीं चाहते थे, जिसको भगवान अर्जुन भी कहते ना, अनिच्छनपि वार्षणीय बलादि, अनिच्छा पूर्वक कुछ अगर गलती होती है तो वहां अनुताप से यह धुल जाता है. भक्त वास्तविक निर्दोष होता है और आकस्मिक हुए पाप कृत्य से के लिए ईमानदारी से यदि अनुताप करे तो भगवत कृपा से वह पाप अनुताप की अग्नि से जल जाते हैं. वहां पे फिर भरत महाराज का भी प्रसंग में प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं. भरत महाराज यद्यपि एक हिरण का शरीर प्राप्त किए, पहले भरत महाराज थे फिर हिरण के बच्चे में आ सकते हैं. तुम्हें प्रवचन देता का चंद्रवंशी प्रभु? एक तो तुम्ही बोलो ना, थोड़ा ये मुझे प्रवचन का खेल नहीं है तो थोड़ा मीत का वाचन घे तो मग जाना जाए चला सकते. भरत महाराज जब हिरण का शरीर प्राप्त किए तो वहां पर वर्णन आता है कि वो निरंतर पश्चाताप कर रहे थे. वहां पर जो एक आप शब्द को देखेंगे भागवत में, आप देखेंगे जितने भक्त जो सिद्धि को प्राप्त किए उनके जीवन में, वो अपने पूर्व जीवन को धिक्कारते हैं. दिक्माम दिक्माम, ये दिक्माम ये शब्द भरत महाराज के लिए भी है. भरत महाराज वहां पे धिक्कार है, मैंने क्या क्या छोड़ दिया था, आया कहां पे था, किस प्रयोजन से मैं आया था, परंतु कहां पर मैं अटक गया. अजामिल प्रसंग में भी अजामिल अपने आप को बहुत धिक्कारते, मैं कौन था, एक ब्राह्मण का पुत्र था, मैंने वेदों का पाठ किया, समस्त मतलब नियमों का अनुशीलन किया और एक वैश्या के चक्कर में कितना नीचे गिर गया मैं. मैंने अपने माता पिता को निकाल दिया, अपनी सुशीला पत्नी का भी त्याग किया. तो भरत महाराज किस में कहते हैं, अनुताप से क्या होता है, तो वहां कहते हैं बाय कॉन्स्टेंट रिपेंटेंस ही बिकेम कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम ऑल मटेरियल थिंग्स. परीक्षित महाराज इसमें कहा कि अनुताप क्या करता है, जो गलती से हुए पाप है वह जल जाते हैं. भरत महाराज के समय कहते हैं अनुताप से वैराग्य आता है. जो व्यक्ति पश्चाताप करता है अपने पूर्व कृत्य के लिए, हालांकि उन्होंने किसी को बताया नहीं, मतलब हिरण परिवार में थे तो अपने हिरण माताजी हिरण पिताजी होंगे, उनको कुछ बताया नहीं, उनको अपना पूर्व जीवन का स्मरण था, वो किसी के साथ उन्होंने बतलाया नहीं, परंतु अपने माँ के गृह घर को त्याग के वो ऋषियों के आश्रम के पास जाकर रहने लगे. और फिर आगे भक्त भी कभी कभी पाप में कृत्य में लग जाता है, जाने में या अनजाने में, परंतु ईमानदारी से वो भगवान के समक्ष जाता है और वो रोने लगता है कि हे भगवान ये मुझसे क्या भूल हो गई, मुझे यह नहीं करना चाहिए था, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना अपराध किया है. तो इस तरह से जब वो क्रंदन करता है, यहां पर शब्द जब क्रंदन करता है भगवान के समक्ष, तो भगवान उसे क्षमा करते हैं उसके प्रामाणिक पश्चाताप के रूप कारण. परंतु यदि वो जानबूझकर पुनः पुनः पाप कृत्य करे, यह विचार करके कि भगवान के सामने जाकर माफी मांग लूंगा, तो उसको कहते फिर सातवा नाम अपराध, फिर वहां क्षमा नहीं करेंगे. ये श्रील प्रभुपाद के प्रवचन में से श्री प्रभुपाद एक पत्र लिखे, उसमें भी कहते हैं एक भक्त अपनी कुछ गलती लिखकर प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद मुझसे एक गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं. तो वहां पर प्रभुपाद लिखते हैं योर हम्बल रिपेंटेंस इज जस्ट लाइक अ वैष्णव स्टूडेंट, सो आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस हम्बलनेस. यह तुम्हारी नम्रता का प्रदर्शन है कि तुम मेरे सामने आकर अपनी गलती को प्रकट कर रहे हो. तो यहां पर और ऐसे कई प्रमाण है, फिर हरिनाम चिंतामणि का प्रमाण देख रहा था, फिर ऐसे अन्य कई प्रमाणों का वर्णन किया गया है, परंतु सबसे प्रमुख रूप से यहां बताया गया कि यदि हम इन दोषों को स्वीकार न करें, अपने पूर्व जीवन में हमसे जो कृत्य हुआ है, हमसे जब गलती, उसको जब तक स्वीकार नहीं करते तब तो उसका प्रारब्ध छूटने वाला नहीं है. जब आप रोएंगे तब तो संभावना है कि शायद वो कट सकता है, अन्यथा वो छूटने वाला है नहीं. और हृदय आसक्ति से मुक्त नहीं होता है. और क्यों व्यक्ति अपने दोष को स्वीकार नहीं करता है, तो प्रमुख रूप से अहम भाव रहता है, उस कारण से वह स्वीकार नहीं कर पाता है. यदि हम दोष को स्वीकार न करें, हमसे गलती को स्वीकार न करें, तो क्या होता है? What are the consequences if you don't admit and repent? ये बहुत सुंदर है। क्या उसके परिणाम होंगे? सर प्रथम होगा कि वो दोष कई गुना बढ़ने लगता है। फिर द अनर्था गेट्स मल्टीप्लाइड का है। सबसे पहली चीज कि अगर उसको स्वीकार करके हम एडमिट ना करें तो पहली चीज है कि वो कई गुना बढ़ जाएगा। मुझ में क्रोध है या मुझ में काम है, मुझ में वासना है, मुझ में जो भी दोष है उसको हम अगर कहीं जाकर न बतलाए तो पहली चीज है वो कई गुना बढ़ता है। और दूसरा है फिर हृदय की प्रामाणिकता जब नष्ट हो जाती है तो हृदय शुद्धिकरण कभी नहीं होता है। मतलब साधना शुद्धिकरण को नहीं लाएंगे यदि दाम्भिकता हो आपके क्रिया में। और फिर क्या होगा है जब आप में दोष है और आप दोष को दबा के रखा है आपने, आप स्वीकार नहीं कर रहे कि मैं गलत हुई, मुझे स्वीकार नहीं है, तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति कभी प्रामाणिक भक्तों की संगति नहीं करना चाहेगा। उनको डाइजेस्ट नहीं होता एकदम शुद्ध भक्तियों की संगति हो या एकदम शुद्ध भक्ति की चर्चा जब होती तो उठकर ही चले जाते हैं या उनकी आंखें बंद हो जाती है। वो चीज उनको एकदम एलर्जी होती है उससे। शुद्ध भक्ति की चर्चा जब उससे एलर्जी होंगी और वो फिर जैसा आपका मन की आपके विचार होते वैसे बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर जिसे कहते हैं। आप में अगर कपट हो जाता है तो आप भी वैसे ही भक्तों के साथ रहना पसंद करेंगे और वो भक्त फिर कभी किसी से मदद लेना नहीं चाहता है, कभी किसी से जिज्ञासा नहीं करेगा, स्वयं होकर कभी किसी से पूछेगा नहीं। अब भागवत में जितने भी संवाद आप देख रहे हैं सभी में आप देख रहे हैं कि चाहे वो परीक्षित सुखदेव संवाद है, शौनक सूद गोस्वामी संवाद है, मैत्रेय विदुर संवाद है, देवहूति कर्दम मुनि संवाद है, जितने संवाद है उसमें जो श्रोतागण है वे स्वयं जाकर याचना किए कुछ बताइए हमको। ऐसा नहीं खुद ही सुखदेव गोस्वामी भागवतम क्लास के लिए बैठ गए थे, परीक्षित महाराज घूमने के लिए गए थे और परीक्षित महाराज जूस वगैरह पी के आराम से आ रहे, तब तक सुखदेव गोस्वामी ने राधा माधव चालू कर दिया और परीक्षित महाराज फिर आराम से आए और सुखदेव गोस्वामी की कथा प्रवचन खत्म भी नहीं हुआ तो उसके पहले परीक्षित महाराज उठ के चले गए मुझे प्रसाद लेने के लिए जाना है। दोनों ने बताया गया सुखदेव गोस्वामी बाद में आए और आप देखें बारहवा स्कंद के शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी उठ के चले गए थे। सुखदेव गोस्वामी प्रवचन देते देते जहां पर उनको जितना कहना था वो कहना जैसे पूर्ण हुआ उन्होंने कुछ बात भी नहीं की, ऐसा नहीं कुछ दक्षिणा दीजिए मेरा पेमेंट कहाँ है ऐसा कुछ बोला नहीं, सुखदेव गोस्वामी उठकर चले गए। और उसके बाद परीक्षित महाराज समाधिस्थ हो गए, फिर उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गई, बाद में तक्षप सर है, तब तक तो सुखदेव गोस्वामी रुके भी नहीं थे ना। तो श्रोता की आवश्यकता है, ये हमारी आवश्यकता है, साधु संग ये हमारी आवश्यकता है, तो हमें जाना पड़ेगा साधु के समक्ष और हमें याचना करें। सूद गोस्वामी जैसे याचना की, परीक्षित याचना किए या रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु के समक्ष जाकर याचना किए। तो साधु संग मतलब इसको कहते हैं ना आप कृपा, यहाँ पर जो शब्द आया है श्लोक में कर्दम मुनि के लिए दयालु मुनि कहते हैं ना, वो दया उनकी उमड़ पड़ी। दया कब उमड़ती? दया मतलब एक जिसको इस संसार में कोई भी तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ का एक गुण होता है कि ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे से ऊपर नहीं। कृत्रिम तो मोटर लगा गया पानी ऊपर चढ़ा तो बात और है, परंतु तरलता का एक स्वभाव होता है कि ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो ऐसे कृपा भी जो तरलता है, ये कृपा का जो प्रवाह कैसे ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो जिसको ग्रहण करना है कृपा उसको नीचे आना पड़ता है और उसी याचना करनी पड़ती है कि हमें हमारे दोष बतलाइए। तो एक तो यहां पर बतलाया गया है कि जब इस तरह से प्रामाणिकता जब आती है तो प्रामाणिकता से क्या करना पड़ता है, प्रामाणिकता से अनुताप कब किया जाता है? दो एक होते हैं, दूसरा ज्यादा कठिन है। पहला कि आप एक तो स्वीकार करेंगे कुछ गलत हुआ है और आप भगवान के समक्ष जाकर भले एकांत में क्यों ना, ये बहुत आवश्यक है कि पब्लिक में कभी रोना नहीं चाहिए, सबके सामने अपने अपने दुख को अपने कष्ट को कहकर बतलाना नहीं चाहिए, भगवान के समक्ष एकांत में। कहते एकांत में जब आप भगवान के समक्ष यदि अपने दोष को स्वीकार करते, भगवान से याचना करते, वह हृदय को पवित्र करता है। ये आसान है परंतु उसका दूसरा ज्यादा कठिन है। आप बहुत अधिक भगवान को प्रार्थना करेंगे, बहुत प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरा दोष है मेरी गलती है तब क्या करते हैं, भगवान हृदय को शुद्ध करेंगे। और हृदय जब शुद्ध होता है तो उसका एक लक्षण होता है कि भगवान फिर आपको पर्याप्त रूप से इतना नम्र बनाएंगे कि आप साधु गुरु के चरणों में जा सके। पहले शुरुआत में अहम भाव रहता है, कैसे किसी को इस प्रभु जी को जाके शची प्राण प्रभु के चरणों में जाके मैं कैसे बोलूं, मैं सीनियर हूं ना, और ये कौन है जो ये मेरा भ्रम है। वास्तविक शची प्राण प्रभु कितने उच्च कोटि के संत है ये कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो अहम भाव के कारण क्या होता है, हम किसी साधु के चरणों में बैठने को तैयार नहीं है। साथ में चेयर में बैठ सकते एक बार के, मगर भाव चरणों में बैठकर आप कहे कि नहीं आप मुझे कुछ कृपा कीजिए, ये बोलना बोलना एक बार का आसान है, दंडो भी मार देंगे वांछा कल्पतरु स्पेशल जोर से कहकर भी गए, परंतु अंदर से सही में क्या हम इस याचक रूप में नहीं है। तो उस याचक रूप में तो कहते कि आप भगवान के समक्ष जाकर क्रंदन करते तो हृदय शुद्ध होता है, और हृदय शुद्ध होने का लक्षण होगा कि आप में इतनी नम्रता आएंगी कि आप एक साधु कोई आपके जीवन में आता है जिस साधु के प्रति आपकी श्रद्धा थी, मैं इस व्यक्ति के सामने अपने पूर्ण दोषों को प्रकट कर सकूं। या मैं कहता हूं चीरहरण लीला के समय भी इस बात को चर्चा कर रहा था कि चीरहरण मतलब क्या है, समस्त आवरणों को हटा दिया जाता है उसको, तो चीरहरण। भगवान के सामने आप छुपा नहीं सकते कुछ, तो गोपिया को छुपाने का प्रयास करें तो भगवान चीरहरण के मतलब भगवान के और जीव के बीच में कोई भी आवरण न रहे। तो वैसे ही जब साधु गुरु के चरणों में बैठकर समस्त आवरणों को जब हटा देते और अपने आप को पूर्ण रूप से एकदम क्या कहते हैं, जैसे एक बालक होता है एकदम नंगू पंगू तो नंगा रहता है बच्चा तो फिर माँ पूरी तरह से उसको देखभाल करती है, और वो खुद होशियार बन जाए तो फिर माँ उतनी देखभाल नहीं करेंगी। तो हम उस बालक की तरह जिसे एकदम निर्वस्त्र होकर जब साधु के समक्ष पहुंचते हैं अपने हृदय के एक क्या कहते हैं जो भगवान को ढकती है उसे कहते पट, और जो हृदय को ढकती है उसे कहते कपट। दो अलग अलग पर्दे होते हैं। कपट क्या करती है, हृदय को ढक देती है, हृदय को आवरण। तो कपट का आवरण जब हटता है और भगवान के समक्ष साधु के समक्ष जब इस जैसे यहां पर माता देहूति स्वीकार की कि मेरा जीवन जो व्यर्थ चला गया, मुझसे इतनी गलती हुई, मुझे जो करना चाहिए था, मुझे जैसी भक्ति करनी चाहिए मैं नहीं कर पाई, जब ये कहकर बतलाया तब कर्दम मुनि बोलना शुरू किया। कहा जाता है कि मैं उस दिन एक प्रवचन सुन रहा था, वास्तविक साधु की संगति में जाते साधु जो बहुत अधिक साधना किए जो भजन किए, एक साधु जितना आपको बतला सकता है, वो कहते हैं कि आप 20,000 ग्रंथों को पढ़ के भी वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है जो एक साधु के चरणों में 20 मिनट बैठकर प्राप्त होता है। 20,000 ग्रंथ बहुत ज्यादा हो गए, 20,000 ग्रंथों को पढ़ने से वह ज्ञान नहीं होगा जो एक साधु के चरणों में 20 मिनट बैठने से प्राप्त होता है। परंतु साधु देंगा कब, जब हम मांगते हैं। साधु के पास बहुत कुछ रहता है, साधु संगति में साधु बहुत कुछ दे सकता है, परंतु देता कब, जब तक परीक्षित ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू किया, जब तक विदुर ने प्रश्न नहीं किया तब तक मैत्रेय बोलना प्रारंभ किया, जब तक शौनक आदि ऋषि ने भागवत के प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न पूछे, और जब जिज्ञासा की तो सुध गोस्वामी बोलना प्रारंभ किया, बोलो बोलो कम से कम 2-3 बार उन्होंने कहा ना, कहिए आप, कहिए आप, बतलाइए। तो ऐसा हमको पीछे पड़ना पड़ेगा, धाई तव पाछे पाछे, तो ऐसे पकड़ जब लेते हैं साधु को तो फिर साधु कुछ बूंदे तब देता है, नहीं तो ऐसे साधु संग तो हम बोले बैठे खुद होके जब तक साधु आके मुझे बताएंगे नहीं मैं तो अपना आराम से बैठूंगी, तो वो साधु संगति का लाभ नहीं होता है। तो माता देवति या जो दो गुण ठीक है बचाओ रह गया अगला श्लोक रह गया, कल किसी और को दिया तो ये फिर अब कर्दम मुनि की दयालुता है कि माता देवहूति इन गुणों को प्रकट की, अनुताप किया और कहा कि मैं आपके संग में रहकर भी मैं नहीं समझ पाई, तो अत्यंत प्रशंसनीय उनका यह जो पश्चाताप है, यह जो वैराग्य है उसकी प्रशंसा मैत्रेय मुनि कर रहे हैं। एक स्त्री में इतना वैराग्य, स्त्री जो स्वाभाविक एक पारिवारिक जीवन में रहना ही पसंद करती है, स्त्री में वैराग्य कभी नहीं आता कि इस तरह से, परंतु माता देवहूति में वैराग्य जब आया कि अब मुझे आध्यात्मिक लाभ चाहिए, मुझे भगवत भक्ति अब चाहिए, तब कर्दम मुनि कहना प्रारंभ किए, तो उसको हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई टीका टिप्पणी? नहीं नहीं, प्रारब्ध भी नहीं और त्रुटि भी नहीं है। वास्तविक यह जो ये तो साक्षात भगवान के परिकर है, भगवान के महान भक्त हैं। मराठी धर्मदा लेकी बोले सुने लगे। भगवान के महान भक्तों को निमित्त बनाया गया भागवत में हमको शिक्षा देने के लिए। तो जो भगवान की माँ बनी है वो कुछ साधारण तो नहीं, उसमें हम कहते त्रुटि हो गई थी, दोष हुआ था, ऐसा नहीं है। और ये आध्यात्मिक बहुत अधिक साधना करेंगे तब ये अवस्था आती है। आपको ऐसा नहीं कि प्रवचन सत्संग में पहले दिन आया और आप में पश्चाताप आया। जैसे मैं कल भी किसी भक्त से कह रहा था, भक्त कहते लगभग 15-20 साल की बहुत गंभीर साधना जब की जाए, बहुत गंभीर जब साधना की जाती है आपकी, बहुत अच्छे से जप करते, बहुत अच्छा साधु संग करते, आप वो श्रवण करते हैं, भागवत अध्ययन करते, कम से कम ऐसा गंभीरता से बहुत सीरियसली 15-20 साल किया जाए, तब क्या होता है, हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होने का पहला लक्षण होता है कि आपको अपने गलती दिखाई देती है और गलती को स्वीकार करते है। मतलब 20 साल का तो भजन लग गया गलती स्वीकार करने में। शुरुआत में तो देवा हो देवा और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन, प्रारंभिक हमको लगता है हम ही सब कुछ है, मेरे जैसा तो कोई भक्त है ही नहीं, कितना बढ़िया हूं मैं, परंतु मेरे जैसे इतना तुच्छ है नहीं, ये समझने के लिए 20 साल चाहिए और वो भी गंभीर साधना। और गंभीर साधना ना हो तो भक्ति जान से कहते हैं कि ये अनुभूति होने के लिए एटलीस्ट 2-3 जन्म लग जाएंगे। 2-3 जन्म के बाद अनर्थ निवृत्ति कहते ना, अनर्थ निवृत्ति पे पहुंचते पहुंचते 20 साल निकल गए और अगर आपने अच्छे से साधना नहीं की तो 2-3 जन्म भी चले जाते हैं और 2-3 जन्म के बाद ये दोष दिखने लगते हैं। तो दोष पहले तो दिखेंगे ही नहीं और दोष दिखने के बाद एक समय आता है कि फिर लगता है कि नहीं अब मैं गलत हूं, जिसको कहते दोष जागृति, अनर्थ जागृति, और फिर होता है अनर्थ स्वीकृति और उसके बाद में फिर अनर्थ निवृत्ति होता है। तो माता देवहूति की जो अवस्था है, परीक्षित बोले परीक्षित से गलती क्यों हुई, माता देवहूति से गलती क्यों है, ये गलतियां जो हुई उनसे गलती कोई हुई नहीं, परंतु उत्तम है या आपना के माने त्रिनाधम, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु है एक उच्च कोटि भक्त का लक्षण है। वास्तव उनमें कोई गलती ना हो फिर भी अपने आप को गलत ही समझते हैं, उनमें भक्ति का उच्च लक्षण होगा फिर भी अपने आप को भक्त मानते ही नहीं हो। हमें भक्ति इतनी सी भी नहीं है, हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा भक्ति है। जिसको कहते हैं जिसका बर्तन वो जिसका घड़ा भरा होता है वो छलकता नहीं है, अधगर अधवर गगरी छलकत जाए। तो हमारी तो कोई भक्ति है नहीं, इसलिए हम उछलते रहते बहुत। क्या कहते उसको, क्या हो रहा था कल, वो कौन सा डांस है बच्चे कर रहे थे, कुछ तो भी कल हो रहा था ना, कुछ शब्द में भूल गया। तो हम भी उछलते रहते भक्ति में। तो माता देवहूति का ऐसा कुछ दोष नहीं था, माता देवहूति तो कर्दम मुनि स्वयं भूमि की पुत्री थी, सबसे प्रथम इस संसार की स्त्री कह सकते हैं ना, प्रथम स्त्रियों में से एक है देवहूति, आकुति, प्रसूति, यह महान महान स्त्रियां है जिनसे इन स्त्रियों से ही पूरा संसार भर गया। संसार में जितने जीव की उत्पत्ति इन स्त्रियों के द्वारा हुई है जिन्हें भगवान अपने माता के रूप में स्वीकार किया। हरे कृष्ण शिल रूपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। स्टॉप कराऊं लाइक।